नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लिए 272 करोड़ रुपए की सीवरेज परियोजनाओं को मंजूरी। देश के वार्षिक भूजल पुनर्भरण में वर्ष 2024 में 15 अरब क्यूबिक मीटर की बढ़ोतरी। उत्तर पश्चिम भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन हल्की बर्फबारी और बारिश का अनुमान व्यक्त किया। भारत में नव वर्ष का स्वागत हर्षोल्लास और धार्मिक भावना के साथ किया जा रहा है। और फुटबॉल में पश्चिम बंगाल ने हैदराबाद में केरल को 1-0 से हराकर संतोष ट्रॉफी जीती। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के चंदौली और मानिकपुर के लिए 272 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 59वीं कार्यकारी समिति की बैठक में कल महानिदेशक राजीव कुमार मित्तल की अध्यक्षता में गंगा नदी के संरक्षण और कायाकल्प के लिए कई परियोजनाओं की जानकारी दी गई। इन गतिविधियों का उद्देश्य नदी की स्वच्छता, सतत विकास और पर्यावरणीय तथा सांस्कृतिक महत्व के संरक्षण को बढ़ावा देना है। बिहार के बक्सर में नदी संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए समिति ने 257 करोड़ रुपए की लागत वाली एक महत्वाकांक्षी परियोजना को भी मंजूरी दी है। इस पहल के तहत 50 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला अत्याधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सहायक संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। देश ने बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में बीते साल नवंबर में वार्षिक आधार पर 4.3% की वृद्धि दर्ज की है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सीमेंट, कोयला, इस्पात, बिजली, रिफाइनरी उत्पाद और उर्वरक के उत्पादन में सकारात्मक बढ़त देखी गई है। नवंबर 2024 में कोयला उत्पादन में 7.5%, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों में 2.9%, उर्वरकों में 2%, इस्पात में 4.8%, सीमेंट में 13% और बिजली उत्पादन में 3.8% की बढ़ोतरी हुई है। देश के कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण में 15 अरब क्यूबिक मीटर की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि वर्ष 2024 में भूजल निकासी में 3 अरब क्यूबिक मीटर की कमी आई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कल वर्ष 2024 के लिए गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की। एक रिपोर्ट।
सभी उपयोगों के लिए वार्षिक भूजल निकासी 245 अरब क्यूबिक मीटर से अधिक है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में भूजल के 100% नमूने सिंचाई के लिए उत्कृष्ट श्रेणी में हैं। ये मूल्यांकन केंद्रीय भूजल बोर्ड तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। मंत्रालय ने कहा कि ब्लॉक, मंडल और तालुकों में कुल 6,746 मूल्यांकन इकाइयों में से 73% से अधिक मूल्यांकन इकाइयों को सुरक्षित और लगभग 3% मूल्यांकन इकाइयों को गंभीर श्रेणी में रखा गया है। समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता, प्रगति और समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में खड़ा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ मिलकर इस क्षेत्र की आवश्यकता पूरी करने की वचनबद्धता दोहराई। भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार के लिए सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण कल लुम्बिनी में शुरू हुआ। 2 सप्ताह तक चलने वाले इस अभ्यास में नेपाल की श्रीजंग बटालियन और भारतीय सेना की 11वीं गोरखा राइफल भाग ले रहे हैं। इससे दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध, आपसी विश्वास और सांस्कृतिक रिश्ते मजबूत होंगे। संयुक्त अभ्यास का 17वां संस्करण पिछले साल भारत के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारा देश प्रतिभाओं का पावर हाउस है, जो नवाचार और साहस प्रदर्शित करने वाली असंख्य प्रेरक जीवन यात्राओं से भरपूर है। उन्होंने कल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ग्रीन आर्मी का उल्लेख करते हुए उनके प्रेरणादायक अग्रणी कार्यों की सराहना की। ग्रीन आर्मी वाराणसी के देवरा में दृढ़ संकल्प वाली महिलाओं का संगठन है, जो नशाखोरी और जुए के खिलाफ जागरूकता बढ़ाता है। ये संगठन प्रत्येक बालिका के जन्म पर उत्सव मनाता है और दहेज प्रथा के विरुद्ध लड़ाई लड़ता है। इस समूह की स्थापना तथा कार्यों की शुरुआत चप्पल बनाने वाली एक फैक्ट्री से हुई थी। आकाशवाणी समाचार अपनी विशेष वर्षांत श्रृंखला में वर्ष 2024 की झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। इसमें आज हम नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की प्रमुख गतिविधियों और उपलब्धियों पर नजर डालेंगे। सरकार ने 2024 में भारत के ऊर्जा परिदृश्य को बदलने की दिशा में अपनी उल्लेखनीय यात्रा जारी रखी है। ये प्रगति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से निर्धारित पंचामृत लक्ष्यों के अनुरूप 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्ध के अनुरूप है। एक रिपोर्ट।
देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए लाई गई नई शिक्षा नीति से लेकर मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या में दोगुना बढ़ोतरी कर केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए संभावनाओं से भरे भविष्य की नींव रखी है। स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से जहां उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं डिजिटल इंडिया के माध्यम से युवाओं को अत्याधुनिक कौशल से लैस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1,42,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। सार्वजनिक परीक्षाओं में धोखाधड़ी और अनुचित व्यवहार को रोकने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 पेश किया गया है, जिसमें अपराधियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में करियर बनाने के लिए विज्ञान धारा योजना की शुरुआत की गई है। वहीं प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार मोदी सरकार की समृद्ध शैक्षिक विरासत को संरक्षित करने के प्रति समर्पण को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के निरीक्षण समिति के निर्देश और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड के शेष पड़े 337 मीट्रिक टन रासायनिक अपशिष्ट को नष्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्य को बड़ी ही सावधानी पूर्वक पूरा किया जा रहा है।
यूनियन कार्बाइड के कचरे वाले कंटेनरों के साथ पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और त्वरित प्रक्रिया बल मौजूद रहेंगे। ये कंटेनर लीक प्रूफ और आग प्रतिरोधी हैं। इन कंटेनरों की आवाजाही पर जीपीएस से नजर रखी जाएगी। गैस राहत एवं पुनर्वास निदेशक स्वतंत्र कुमार सिंह ने कहा कि
337 टन जो टॉक्सिक वेस्ट है यूनियन कार्बाइड के परिसर में है, इसको पीतमपुर की साइट में जाकर के वहाँ पे इंसिनरेट करना है। उनकी तैयारियां चल रही है, उसकी पैकिंग की प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशन इसमें लिया जा रहा है।
वही सरकार ने स्पष्ट किया है कि यूनियन कार्बाइड के कचरे को नष्ट करने के ट्रायल के दौरान और उसके बाद उत्सर्जन मानक निर्धारित राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पाए गए हैं और वहां के पानी या हवा में कोई हानिकारक तत्व नहीं पाए गए। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि वर्ष 2024 में राज्य के 9,00,000 से अधिक लोगों को आधार कार्ड मिले जिनके बायोमेट्रिक्स राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट करने के दौरान लॉक हो गए थे। उन्होंने कहा कि इस पहल से उन लोगों को अब बिना किसी परेशानी के सभी सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। मणिपुर सरकार जाति हिंसा से विस्थापित लोगों को मुख्यमंत्री उद्यमिता सहायता योजना के अंतर्गत 50,000 रूपये तक का ऋण बिना कुछ गिरवी रखे प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बताया कि सरकार पहले ही लगभग 426 विस्थापित लोगों को उद्यमशीलता गतिविधियों में मदद के लिए ऋण दे चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार द्वारा वित्त पोषित और सफलतापूर्वक चल रहे स्टार्टअप हिंसा प्रभावित लोगों को रोजगार देंगे। अरुणाचल प्रदेश में स्वदेशी संस्कृति, आस्था और भाषाओं पर प्रचार, प्रलेखन, अनुसंधान तथा शिक्षा के लिए अमेरिका स्थित अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र ICCS के सहयोग से एक विश्वविद्यालय स्तर का संस्थान खोला जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इसकी घोषणा की है। ICCS का अरुणाचल प्रदेश में निचली दिबांग घाटी के रोइंग में रिवॉच नामक एक केंद्र है जो इंदु मिश्मी संस्कृति और भाषा पर दस्तावेजीकरण, संरक्षण, प्रचार तथा अनुसंधान कार्य करता है। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले के कटरा में रोपवे परियोजना के विरुद्ध आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। कल शाम 7वें दिन सरकार और संघर्ष समिति के सदस्यों के बीच समझौते के बाद ये आंदोलन रोक दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस समझौते के तहत रियासी और उधमपुर जिलों में बंद संघर्ष समिति के सभी 18 सदस्यों को प्रशासन ने बिना शर्त रिहा कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी का अनुमान जताया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर आज दिन में कड़ाके की ठंड का असर रहेगा। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी, कन्याकुमारी और तटीय इलाकों, मालदीव के आसपास के क्षेत्रों, श्रीलंका के तटीय क्षेत्रों सहित दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने मछुआरों को इन क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी है। कश्मीर में पिछले 2 दिन से शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग ने इस सप्ताह के दौरान घाटी में हल्की से मध्यम बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया है। रात का तापमान 0 से नीचे बना रहेगा। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। श्रीनगर करगिल सड़क को वाहनों के लिए एक तरफ से खोला गया है। भारत पारंपरिक हर्षोल्लास और धार्मिक भावना के साथ नव वर्ष 2025 का स्वागत कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने कहा कि नया वर्ष सभी के जीवन में नई उम्मीदों, सपनों और आकांक्षाओं की शुरुआत का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इस अवसर पर नागरिकों से लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखने और राष्ट्र को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। राजधानी दिल्ली में धार्मिक उत्साह और उत्सव के माहौल के साथ नए साल का स्वागत किया गया। वर्ष के पहले दिन बिरला मंदिर और झंडेवालान सहित विभिन्न मंदिरों में सुबह की आरती में शामिल होने और देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए लोग उमड़ पड़े। हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने बड़े उत्साह के साथ नए साल का स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि पर्यटकों की संख्या को देखते हुए राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
नववर्ष के जश्न को यादगार बनाने के लिए पर्यटकों सहित स्थानीय लोग भी रात 12 बजे तक नाचते गाते नजर आए। खासतौर पर पर्यटकों और युवाओं में काफी उत्साह देखा गया। प्रदेश के विभिन्न होटलों में पर्यटकों के मनोरंजन के लिए विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस दौरान राजधानी शिमला समेत मनाली व अन्य पर्यटन स्थलों में सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए थे। इस बीच नए साल के पहले दिन आज लोग प्रदेश के शक्ति पीठों सहित अन्य मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं और एक दूसरे को नव वर्ष की बधाई दे रहे हैं। प्रभा शर्मा, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
मुंबई से हमारी संवाददाता ने बताया कि प्रशासन ने नए वर्ष के उत्सव को हर्षोल्लास से मनाने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए हैं।
मुंबई में समुद्र किनारे पर स्थित गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, कीरगांव चौपाटी, बांद्रा बैंडस्टैंड, जुहू और वर्सोवा बीच सहित शहर के प्रमुख स्थानों पर बड़ी संख्या में लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए एकत्र होते हैं। बड़ी भीड़ को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। मुंबई में 14,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। साल के पहले दिन सिद्धिविनायक मंदिर और प्रभा देवी सहित विभिन्न मंदिरों में विशेष आरती होती है। BEST ने मुंबई में प्रसिद्ध स्थलों का आनंद लेने के लिए एयर डबल डेकर्स इलेक्ट्रिक बसों को हेरिटेज टूर की व्यवस्था की है। शहर के प्रमुख इमारतों को रंगीन रोशनी से सजाया गया है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पश्चिम बंगाल ने केरल को 1-0 से हराकर प्रतियोगिता जीत ली है। इस टूर्नामेंट में पश्चिम बंगाल की ये 33वीं जीत है। हॉकी इंडिया लीग में हैदराबाद तूफान्स ने कल ओडिशा के राउरकेला में दिल्ली एसजी पाइपर्स को शूटआउट में 5-4 से हराकर बोनस अंक हासिल किया। राउरकेला में आज रात 8 बजे शाची राड बंगाल टाइगर्स का मुकाबला टीम गोनासिका से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरत नाज।
धन्यवाद निखिल। नववर्ष 2025 से जुड़े समाचारों को अधिकतर अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो साझा कर काव्यात्मक अंदाज में देशवासियों को दी शुभकामनाएं। पत्र ये भी लिखता है कि अब EPFO पेंशनर किसी भी बैंक से ले सकेंगे पेंशन, नियम आज से प्रभावी। हिन्दुस्तान और राजस्थान पत्रिका के अनुसार इस वर्ष विकास की दौड़ में फिर से फर्राटा भरेगा भारत। पंजाब केसरी की सुर्खी है, आज से UPI की लेनदेन सीमा बढ़ने के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट के नियमों में होगा बदलाव। वहीं राष्ट्र सहारा लिखता है, वाहनों का जांच अभियान आज से शुरू, कागजात सही न होने पर चालान या जब्ती। दैनिक भास्कर और वीर अर्जुन की खबर है, प्रयाग महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु रेलकर्मियों की जैकेट पर लगे स्कैनर से भी बना सकेंगे रेल टिकट। दैनिक ट्रिब्यून ने बदलते मौसम पर लिखा है, पहाड़ों पर बर्फ की चादर, मैदानों में ठंड का कहर।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लिए 272 करोड़ रुपए की सीवरेज परियोजनाओं को मंजूरी। देश में वार्षिक भूजल पुनर्भरण में वर्ष 2024 में 15 अरब क्यूबिक मीटर की बढ़ोतरी। उत्तर पश्चिम भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने अगले 2 दिन हल्की बर्फबारी और बारिश का अनुमान व्यक्त किया। भारत में नववर्ष का स्वागत हर्षोल्लास और धार्मिक भावना के साथ किया जा रहा है। और फुटबॉल में पश्चिम बंगाल ने हैदराबाद में केरल को 1-0 से हराकर संतोष ट्रॉफी जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।